ओम शांति। हम सभी राजयोगिनी शारदा देवी जी का वेलकम करेंगे। आज संडे का दिन है तो बहुत ही ज्यादा ट्रैफिक है और संडे को सभी लोग अवॉइड करते हैं नीचे से ऊपर आना या जाना। तो दीदी बहुत पहले से निकली है नीचे से, लेकिन ट्रैफिक की वजह से फिर भी दीदी समय पर पहुंच गई हैं। तो आप सभी तो दीदी जी के बारे में भली भांति जानते हैं, लेकिन कुछ एक भाई बहन हैं जो बिल्कुल नए हैं, उनके लिए मैं दीदी का संक्षिप्त परिचय दे दूं कि आप अहमदाबाद अंबावाड़ी सब जोन की डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग ट्रस्टी ऑफ हेल्दी हार्ट एंड रिसर्च फाउंडेशन हैं, कोऑर्डिनेटर ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम जो हेडक्वार्टर्स में होते हैं उनके हैं, कोऑर्डिनेटर ऑफ रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम्स फॉर रेगुलर बीकेज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो इन सभी प्रोग्राम्स को आप कंडक्ट करते हैं। इसके अतिरिक्त आप वुमेन्स विंग की नेशनल कोऑर्डिनेटर भी हैं और जो भी ब्रह्मा कुमारीज में और भी हेडक्वार्टर में कार्यक्रम चलते हैं सबको आप कोऑर्डिनेट करते हैं। दीदी जी का लौकिक जन्म जयपुर में हुआ और वहीं से आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की आपने आर्ट से, और बैचलर ऑफ एजुकेशन की भी डिग्री आपने वहाँ से लिया। गवर्नमेंट स्कूल में आपने वहाँ अध्यापन का भी कार्य किया। दिल्ली में भी आपने बहुत समय तक ईश्वरीय सेवाओं को आपने का संचालन किया। ओवरसीज में भी अनेक देशों में जैसे सिंगापुर, इंडोनेशिया, फ्रांस, इटली, यूके, अनेक देशों में भी जाकर के आपने अपनी सेवाएं दी हैं। तो दीदी जिसे अभी हम सुनेंगे, ब्राह्मण जीवन के लिए नियम एवं मर्यादाएं।
ओम शांति। शुरू करने से पहले थोड़ा सा एज ग्रुप, 1 से 5 वर्ष से जो बाबा के बने हैं वे हाथ उठाएंगे। ओके, 6 से 10 वर्ष, 11 से 15, 16 से 20 और जो 20 से ऊपर के हैं वे हाथ उठाएं। संगम का ये समय बहुत वैल्यूएबल है और सारे कल्प के इस वैल्यूएबल समय में बाबा ने मुझे ढूंढकर अपना बनाया और न सिर्फ अपना बनाया परंतु न सोचा था न समझा था न ही स्वप्न में भी होगा कि बाबा हमें मनुष्य से देवता बनाएंगे, विश्व का मालिक बनाएंगे और फिर से हमारी स्टूडेंट लाइफ शुरू हो जाएगी। सोचा था किसी ने फिर से स्टूडेंट बनेंगे? किसी ने भी नहीं सोचा ना। लेकिन ये देखो सृष्टि की रचयिता की विशेष कमाल है जो हम सबको स्टूडेंट लाइफ में ले गए। स्टूडेंट लाइफ के कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं, कुछ मर्यादाएं होती हैं जिसको स्टूडेंट्स को फॉलो करना होता है और हम तो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स नहीं हैं। लेकिन गॉड फादरली स्टूडेंट हैं, जिनको गॉड टीचर बन करके पढ़ाते हैं और डिग्री लेते हैं मनुष्य से देवता बनने की, तो उसके लिए भी बाबा साकार मुरलियों में कई बार कहते हैं कायदे में फायदा है। तो संगम का हर पल हमको फायदा लेना है, हर कदम में पद्मों की कमाई करनी है, तो कुछ ना कुछ उस डिग्री को लेने के लिए हमें मर्यादाओं पर भी चलना है। तो वो मर्यादाएं हमारे इस ब्राह्मण जीवन का सबसे बड़ा श्रृंगार है, जिस श्रृंगार से इस ब्राह्मण जीवन की शोभा है। जितना हम अपने को नियम मर्यादाओं से श्रृंगारते हैं उतना हमारा भविष्य ऊंच बनता है, क्योंकि हम भविष्य के लॉ मेकर्स हैं। हमारा हर कर्म लॉ बन जाता है, तो लॉ मेकर लॉ को ब्रेक नहीं कर सकते हैं। अगर संकल्प और स्वप्न में भी हमने कोई भी लॉ को, मर्यादा को, नियम को तोड़ा, तो उसका हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ जाता है, लकीर खींच जाती है कि मैंने कायदे का उल्लंघन किया है। तो बाबा हमको कायदों पर चलना सिखलाते हैं, दुनिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी, उस कॉन्स्टिट्यूशन के भी हम अगेंस्ट नहीं जाते हैं, जहां हमारे अधिकार हैं वहां कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। तो बाबा से हमको भी विश्व के मालिकपन का, बेहद के बाप के वर्षे का अधिकारी बनना है, तो उस अधिकारी के लिए कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, ड्यूटीज भी है, और कर्म को श्रेष्ठ बनाने के लिए नियम और मर्यादाएं भी है। तो बाप दादा की जो श्रीमत, जो आज्ञाएं, जो फरमान, जो डायरेक्शंस है, उन्हीं आधारों को लेकर के हमारी आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी ने नियम और मर्यादाएं तैयार कराई, और वो हम हर वर्ष बहनों को भी सुनाते हैं, दो तीन बार भाई बहनों की भी जब भट्टियां हुई तब भी उनको रिवाइज कराते हैं, क्योंकि चलते चलते ब्राह्मण थोड़े ऊपर नीचे होते हैं, कभी उड़ते हैं कभी सागर में चले जाते हैं, तो वो भी अनुभव करते हैं, इसलिए वो रिवाइज करना भी हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और फिर उसके बाद में कुछ वर्षों के बाद 2018 में उन नियम मर्यादाओं को फिर से रिवाइज किया, जब हमारी आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी थे, क्योंकि समय के साथ साथ कुछ करेक्शंस एडिशंस करनी पड़ती है। जो मूलभूत मर्यादाएं हैं उनको टच नहीं कर सकते हैं, वो तो बाबा की श्रीमत जो है जैसी है वो तो वैसी ही रहेगी, लेकिन कुछ ऐड जरूर करना पड़ता है, डिलीट तो नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले दादी जी के ही शब्दों में, जो दादी जी ने दो शब्द दिए मर्यादाओं की प्रोफाइल के लिए, वो सुनाती हूं। हम सभी निमित्त बने हुए बाबा के राइट हैंड्स विश्व के आधार स्तंभ हैं। इन नियम मर्यादाओं पर चलना हमारे इस ब्राह्मण कुल की शान है। मीठे बाबा ने विधि से सिद्धि प्राप्त करने का पुरुषार्थ बताया है। हर आत्मा के व्यक्तिगत विकास का उत्तरदायित्व हमारा है। हमारा हर संकल्प, बोल, कर्म दिव्य हो, ईश्वरीय विधान के अनुसार हो, हमारा आचरण गुणग्राही हो एवं हमारा हृदय स्नेह व कल्याण हेतु सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना से युक्त हो। हमारी दिनचर्या रूहानियत से ओतप्रोत हो, तभी हम धरती के चैतन्य सितारों का ये संगठन विश्व के अंधकार को समाप्त कर हर आत्मा को सत्यता के प्रकाश की अनुभूति कराएगा। अतः मेरी यही शुभ भावना है कि सभी ब्राह्मण वत्सों में वो दिव्यता आए जिससे हर एक चलते फिरते लाइट माइट संपन्न फरिश्ता दिखाई दे, सभी संगठित हो, एकता व स्नेह के सूत्र में पिरोकर एक माला के मणके बन विश्व के आगे बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। इस पुस्तिका में समय प्रति समय बाप दादा द्वारा दी गई शिक्षाओं को मोतियों की तरह संग्रह करके माला बनाई गई है। इनकी धारणा से हमारी अलौकिकता में वृद्धि होगी। जितना जितना इस अनुशासनिक संहिता के अनुरूप अपने जीवन को बनाएंगे, उतना उदाहरण मूर्त बनकर अपने ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करेंगे। ईश्वरीय स्मृति के साथ बीके रतन मोहिनी दादी जी। अब हमारे इस ईश्वरीय दरबार के जो लॉज हैं, जो नियम हैं, हम सभी बेहद के वैरागी, बेहद के सेवाधारी लॉ मेकर्स और पीस मेकर्स हैं। हम अपने इस ईश्वरीय राज दरबार के लॉज को जितना जितना पालन करेंगे, अपने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे, मर्यादाओं पर चलने का फायदा क्या होगा, संस्कारों का परिवर्तन, आपस में मिलजुल कर रहेंगे, उतना हमारे इस राज्य दरबार का एवं यज्ञ का नाम रोशन होगा। बाप दादा, हम बच्चों को अनेक आज्ञाओं के साथ फरमान भी करते हैं, हमें उन फरमानों का पालन करने का वायदा करना है। वायदा करने से हम स्वयं को परिवर्तन कर सकेंगे तथा ईश्वरीय नियमों पर पूरा अटेंशन दे सकेंगे। पहला है, हमें अमृत वेले के शांत और पवित्र वातावरण में 4 बजे के अंदर उठकर 4 से 4:45 तक याद की यात्रा करना आवश्यक है, आवश्यक ही नहीं अति आवश्यक है। तो सब अमृत वेला करते हैं रेगुलर, यहां तो करते हैं लेकिन घर में भी करते हैं? जो घर में करते हैं वो हाथ उठाओ, कोई कोई है नहीं करते हैं। सतगुरु बाप से श्रेष्ठ शक्तियां प्राप्त करने की योग साधना करनी है। हमें बाकायदा इकट्ठा क्लास में बैठना है। योग साधना हमें कर्मेंद्रिय जीत बनाती है। अगर हम अमृत वेले योग साधना नहीं करते हैं तो ये भी लॉ ब्रेक है। दूसरा, हम गॉडली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हमारी पढ़ाई है मुरली, हमें मुरली कभी भी मिस नहीं करनी है, ये स्टूडेंट्स के लिए लॉ है। तीसरा, हमारा ये बेहद का परिवार है, परिवार में बहुत स्नेह से संगठन में रहना है, देहधारियों का लगाव, ना देहधारियों से लेना देना, ना देह के संबंध में रहना है, ना ही ये हमारा अब दैहिक परिवार है। देह के संबंध से देखना नहीं, व्यवहार में नहीं आना, ये हमारा ईश्वरीय परिवार का लॉ है। अभी हम आत्मा के संबंध में आ गए। देह के संबंध से व्यवहार करेंगे तो देह के बंधन पहले वाले तो चुक्त हुए नहीं और नए बंधनों में बंधना शुरू कर देते हैं। चौथा, कभी भी किसी को दुख नहीं देना है, देते नहीं है परंतु ले लेते हैं। ये श्रीमत है नहीं, लेने की श्रीमत है, फिर क्यों लेते हैं? हाँ, फिर क्यों लेते हैं? कल एक बड़ी बहन बहुत अच्छा अपना एक बैठी रूहान हम कर रहे थे तो बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस शेयर किया। कहा पहले कोई भी ऊपर नीचे करता था, या किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, या मैं कभी किसी को कुछ बोल देती थी, कुछ गलत काम किया तो अंदर लगता था, खुद भी डिस्टर्ब होते थे औरों को भी डिस्टर्ब करते थे। लेकिन अभी मैंने पिछले 2 वर्ष से एक बहुत गहरे पुरुषार्थ का लक्ष्य रखा है, जो जैसे ही कभी कुछ कोई बोलता है या करता है तो मेरा इस जन्म का तो हिसाब है ही नहीं, ऐसा कोई मैंने कर्म बंधन नहीं बनाया, लेकिन ये पिछले 63 जन्मों का है। तो जैसे ही ये स्मृति आती है, पिछले 63 जन्मों में से कोई जन्म का लेन देन होगा वो चुक्त हुआ, मेरा मन बुद्धि इतना शांत और शीतल हो जाता है और अंदर खुशी होती है और लाइट अनुभव करती हूँ। तो खुद के पुरुषार्थ के लिए कोई ना कोई बाबा जो हमें युक्तियां बताते हैं उसको यूज करें। ओम शांति। 5वां, हमें बाप की आज्ञा मिली है, तुम्हें अपना तन मन धन संकल्प श्वास विश्व कल्याण की सेवा में सफल करना है। अपने पुराने संस्कारों का त्याग करना है। उनकी आज्ञा में हमें ये भी ऑर्डर है कि तुम्हें कंप्लीट पवित्र बनना है, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनना, ये हमारे राज दरबार का लॉ है। छः, हम आज्ञाकारी, वफादार, यज्ञ के फेथफुल बच्चे हैं। हमें कहां भी अमानत में ख्यानत नहीं डालनी है। सात, बाबा की आज्ञा है, जो भी सेंटर्स हैं, पाठशालाएं हैं, किसको भी किसे भी अपना नहीं समझना है। ऐसा समझना है ये अमानत है। आठ, स्वमान में रहकर हर एक से सम्मान युक्त व्यवहार करना, शुद्ध व्यवहार करना, एक दो के प्रति फेथ और रिगार्ड रखना है। यदि कोई ईश्वरीय मर्यादा के विपरीत शादी करते हैं, कुमार कुमारियां आते हैं, आपस में लगाव झुकाव हो जाता है, शादी कर लेते हैं, 12 मास के लिए उनको सेवा केंद्र पर आने की अनुमति नहीं है, तब तक ईश्वरीय सेवा करने की भी स्वीकृति नहीं है। यदि वायदा करते हैं कि हम नियमों पर चलेंगे, पूर्ण नियमों मर्यादाओं का पालन करने के पश्चात ही सेवा केंद्र पर क्लास के लिए आ सकते, पर वो भी जो रेगुलर क्लास होता है उसमें नहीं, लेकिन उनका क्लास अलग से ही होगा, संगठन में नहीं। तो विशिष्ट परिस्थितियों में मुख्य प्रशासिका को अधिकार है उनसे स्वीकृति ली जानी आवश्यक है। नियमित विद्यार्थियों के लिए अनुशासन संहिता। विद्यार्थी इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के विषय में इस सत्यता में पूर्ण निश्चयवान होगा कि इसकी स्थापना स्वयं परमपिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा के साकार माध्यम द्वारा की है, और यहां दी गई शिक्षा का उद्भव एवं स्रोत शिव बाबा है। ये निश्चय है सबको? कोई निश्चय को हिलाने की कोशिश करे तो हिलेंगे? देखना, मामा पेपर लेती थी निश्चय का, बाबा का बनेंगे? हाँ बनेंगे। इतना बड़ा मटका पानी का पिएंगे? हाँ पिएंगे। शेर आएगा तो नहीं डरेंगे? नहीं डरेंगे। ऐसे करती थी, फिर आग झपक दी और आपने झपक ली तो डर गए। तो कोई भी परिस्थिति में कितनी भी हलचले हो, सारी दुनिया एक तरफ हो, आप एक तरफ हो, निश्चय हिलना नहीं चाहिए। परमपिता परमात्मा शिव आत्मा के परमपिता है, और उनके साकार माध्यम ब्रह्मा बाबा को हमने अपना इस अलौकिक जन्म का पिता माना है। ये क्लास, ये सेवा केंद्र, ये देवी परिवार का वातावरण पवित्र, शांत, युक्ति युक्त, बाप दादा द्वारा निर्दिष्ट मर्यादाओं के अनुकूल बनाए रखने में सहयोगी बनना है, विघ्न रूप नहीं बनेंगे। पांचवा, भोजन की सात्विकता संबंधित नियमों का पालन करेंगे और मद्यपान, धूम्रपान, प्याज, लहसुन आदि निर्दिष्ट वस्तुओं का सेवन नहीं करेंगे। कोई प्याज लहसुन खाता है इसमें? तो हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। प्याज लहसुन जो खाता है हाथ उठाओ। ये एक बहन इधर है, एक पीछे है, अपनी दीदी से कंसल्ट करना है, क्योंकि ये हमारा दैवी भोजन नहीं है। विचारों को स्टिमुलेट करता है, देवताओं को कभी प्याज लहसुन स्वीकार नहीं कराते हैं। छठी बात, अगर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष आदि में से कोई भी विकार या बुरा संस्कार मन को प्रभावित करता है, तो अपनी केंद्रीय प्रभारी, जोन इंचार्ज या अधिकृत आध्यात्मिक बहनों व भाइयों से मार्गदर्शन लेंगे। आपस में चर्चा नहीं करेंगे। जहां मुझे इसके लिए मार्गदर्शन मिलना है उनसे ही बात करें, एक दूसरे से नहीं करें। अपनी भूल के लिए प्रायश्चित करना होगा और उसकी अवस्था या उसके संस्कार दूसरों के पुरुषार्थ में बाधा ना बने अथवा निरंतर विघ्न रूप ना हो, उसके लिए मिले हुए निर्देश अनुसार उस निर्देशों का पूर्ण पालन करेंगे और जिससे केंद्र का वातावरण भी दूषित ना हो। अपनी स्थिति को निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी बनाने के तीव्र पुरुषार्थ में लगे रहना है। अपनी स्थिति को अव्यक्त, डबल लाइट, फरिश्ता समान बनाने का पूरा पूरा ध्यान रखना है। आत्मनिश्चय का, सोल कॉन्शियस का अभ्यास करते रहना है। अपने सभी संबंधों को आत्मनिश्चय की दृष्टि, वृत्ति, स्मृति के आधार से ही देखना, व्यवहार करना है। मूल फाउंडेशन ही आत्म अभिमानी स्थिति है। ब्रह्मा बाबा के जीवन को अपने लिए आदर्श मानते हुए उनका अनुकरण करना है अथवा उनके समान अपने तथा दूसरों के जीवन को ढालने का यत्न करना है। गुण ग्राहक वृत्ति बनाए रखना और कर्म करते समय ये ध्यान देना, एक तो जब एक दो के बहुत नजदीक आने लगते हैं, सेवा केंद्र पर भी नजदीक बहनों के आने लगते हैं, तो दृष्टि जो गुण ग्राहक होनी चाहिए वो दोष दृष्टि हो जाती है। कि मान लीजिए आप नए नए हैं, 2 साल 4 साल से हैं, औरों में कमी कमजोरी देखी, कोई ऐसा संस्कार देखा, तो आपस में वर्णन करना शुरू कर देते हैं। अब वो वर्णन करने से मुझे क्या प्राप्ति होगी? फिर वही चिंतन चलेगा, ये बाप की श्रीमत नहीं है। ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध कोई कर्म ना हो, दैवी मर्यादा के विरुद्ध कोई कर्म ना हो जिसे देखकर किसी का जीवन पतन की ओर जाए अथवा डिससर्विस हो कि ये तो हमारे से इतने पुराने हैं तभी भी ऐसा करते हैं, हम तो आज के आए हैं, इनसे तो हमारी धारणा अच्छी है, ये सोच ये दृष्टि हो जाती है जो मेरा ही नुकसान करती है। अपने से बड़ों को सम्मान, छोटों को स्नेह और सभी को सहयोग से और हर एक के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखनी है। अश्लील साहित्य नहीं पढ़ेंगे, अश्लील फिल्म व समाचार न देखेंगे न सुनेंगे और न ही किसी के कुसंग में आएंगे जो मुझे गुमराह करने वाले हों। नॉवेल्स और स्टोरीज पढ़ने का किस किस को शौक है? नॉवेल्स स्टोरीज पढ़ने का किसको शौक है? टीवी में सीरियल्स कौन कौन देखते हैं? कोई नहीं देखता है? पक्के हो? सभी पक्के हो? देखो एक बहन ने बड़ी सत्यता से 1, 2, 3, 4 देखो अभी कहते हैं सभी देखते हैं, कभी कभी देखते हैं। देखो दूध में एक बूंद पॉइजन की डालें तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पॉइजन हो जाएगा। और पॉइजन में अगर एक बूंद अमृत की डालूं तो भी पॉइजन हो जाएगा। तो क्या करेंगे? जैसा कर्म मैं करूंगी मुझे देखकर दूसरे भी करेंगे। आज चलो मान लीजिए कोई फैमिली सीरियल है आपने देखी, उसके बीच में फिर एड्स चलेंगी। हम तो देखते नहीं, हमको सुनाते हैं ऐसा होता है, एड्स होती हैं उसमें, पीछे दूसरी आई तो चलो देखें तो सही इसमें क्या है। ये एक ऐसी बीमारी है जो लगती है तो छूटती नहीं है, इसलिए इस पर ध्यान रखना है। मोबाइल का प्रयोग केवल जरूरी कार्य व्यवहार के लिए ही करना है। ये खिलौना इतना अच्छा है, सारा दिन खेलते रहो तो टाइम कहाँ पास हो जाता है पता ही नहीं लगता है, पर यह नहीं मालूम है इसके साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं। लौकिक दुनिया की दृष्टि से भी देखें तो इसकी जो रेजेस है वो ब्रेन के सेल्स को खत्म करती जाती है, हमारी आई साइड को वीक करती जाती है। तो जितना आवश्यक है उतना ही उसको यूज किया जाए, यूज करने की मना नहीं है, पर अननेसेसरली जो उसमें घुस जाते हैं तो फिर कहां के कहां पहुंच जाते हैं पता नहीं पड़ता है, तो उस पर ध्यान रखना चाहिए। यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि में आने वाले उल्टे सीधे समाचारों से स्वयं को बचाएं और व्यर्थ के समाचार जो व्हाट्सएप आदि पर भी आते हैं कृपया किसी को भी फॉरवर्ड ना किए जाएं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय की शिक्षाओं को मुख्यालय द्वारा निमित्त व्यक्ति की स्वीकृति के बिना कोई भी पुस्तिका, लीफलेट, पैम्पलेट्स आदि छपाएंगे नहीं कि अच्छा है हम प्रिंट करें बाबा की सेवा करें, लेकिन नहीं, जो निमित्त सेंटर पर है उनसे पूछे बिगर आप प्रिंट नहीं करा सकते हैं। ईश्वरीय सेवा केंद्र के विद्यार्थी राजनीतिक, व्यापारिक, व्यावसायिक, देह अभिमान और लौकिकता में लाने के वाले विषयों पर सेवा स्थान पर चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अलौकिक दिव्य वातावरण है, लौकिक दुनिया के वाइब्रेशन से उस स्थान को मुक्त रखना हमारा फर्ज है। सेवा केंद्र प्रभारी को बाप दादा द्वारा नियुक्त शिक्षिका के स्थान पर मानकर उन द्वारा दिए गए अनुशासन, आचार, मर्यादा संबंधी आदेशों, निर्देशों का पालन करना होगा तथा केंद्र प्रभारी सेवा केंद्रों के बीच व मुख्यालय से संबंधित व्यवहारिक नियमों को जो बताएंगी उस अनुसार चलना होगा। यदि विद्यार्थी समझेगा कि उसे अपनी बात शिक्षा केंद्र प्रभारी के सन्मुख रखने का पूरा अवसर नहीं मिला, मान लो कोई गलती हो जाती है, कोई भूल हो गई या कुछ भी हलचल ऊपर नीचे की परिस्थिति आई और वो सोचता है मैं जो कहना चाहता हूँ वो बहनें सुनती नहीं है, उन्होंने सुना नहीं या मुझे पूरा चांस नहीं मिला और फिर मुझे पनिश कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर आप सब जोन इंचार्ज को बता सकते हैं। कोई विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत व्यवसाय में विश्वविद्यालय के नाम का दुरुपयोग नहीं करेगा कि कोई जॉब के इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो उसमें पहले ही बोल देंगे हम ब्रह्मा कुमारीज में जाते हैं। तो बाबा के विद्यालय का तो नामाचार बहुत है और दुनिया में उसके लिए इम्प्रेशन बहुत अच्छी है, इसलिए मेरी इम्प्रेशन अच्छी हो जाए, लेकिन अगर उसके बाद में कुछ भी मैंने उल्टा सुलटा किया तो नाम किसका खराब होगा। इसलिए ये बातें बहुत ध्यान में रखने की हैं। यदि सेवा केंद्र प्रभारी ये महसूस करती है कि विद्यार्थी उपरोक्त सभी या किसी भी नियमों को भंग करता है और अमर्यादा फैलाता है जिससे अनुशासन भंग होता है, आचार संहिता का उल्लंघन होता है, सेवा स्थान का वातावरण दूषित होता है या दैवी परिवार के संगठन पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो उस विद्यार्थी को शिक्षा सावधानी देने के बाद और कारण बताने के बाद क्षेत्रीय प्रभारी की राय से उसे निश्चित समय के लिए निलंबित या निष्कासित किया जा सकता है। क्योंकि अगर हम डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, मर्यादाओं में नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा, बाबा का नाम खराब होगा, ना मैं चलूंगा और ना किसी को चलने दूंगा और ही हम उन्हों को भड़का देते हैं। तो भड़काने का काम हमको नहीं करना है। प्रतिदिन क्लास श्रीमत क्या है, प्रतिदिन क्लास करना, यदि किसी कारण क्लास में ना जा सके तो मुरली पढ़ना व सुनना, अमृत वेले योग अभ्यास करना, भोजन संबंधी नियमों का पालन करना, भोजन का भोग लगाना, योग युक्त होकर बनाना और योग युक्त होकर के भोजन को स्वीकार करना, विधि विधान को सदा कार्य में लाना, दैवी परिवार की एकता भंग ना हो, आपसी संघर्ष पैदा ना हो, ऐसा मर्यादाओं के विपरीत सेवा में कोई भी कर्म ना हो, स्वयं को निमित्त मानकर कर्म करना, बाप दादा को ही प्रत्यक्षता के लक्ष्य से आगे रखना, अपनी मान शान नाम के लिए कोई भी कर्म व सेवा न करना, टीवी रेडियो में अश्लील फिल्म चित्र समाचार देखना व सुनना नहीं। अन्न की शुद्धि के लिए वैसे भी कहा जाता है, जैसा अन्न वैसा मन। संग दोष से सदैव दूर रहना, नित्य बाप का संग अर्थात याद में रहे, और योगयुक्त ज्ञानी तो आत्माओं के ही संग में रहे, जिनके जीवन से चलन से हमें प्रेरणाएं मिले। दैवी गुणों की धारणा ये जीवन का सच्चा श्रृंगार है। दैवी गुणों की धारणा हमारा सच्चा धर्म है। ईश्वरीय सेवा ये ब्राह्मणों का दिव्य और श्रेष्ठ कर्तव्य है। स्वयं की उन्नति के लिए सारा दिन अपना पोता मेल चेक करना, बार बार अपने चार्ट को चेक करना। दादी गुलजार कहती थी, रोज रात को धर्मराज बाबा को सामने लाओ, बाबा को धर्मराज बाबा को सामने रख करके अपनी डायरी में आज सारा दिन भर मेरे से कोई भूल हुई, कोई ईश्वरीय मर्यादा का सूक्ष्म में भी उल्लंघन हुआ कि मैंने जोर से बोल दिया, तीखा बोल दिया या अनुमान लगा लिया, कुछ भी हो, वो सारे दिन के चार्ट को चेक करके उसको लिखो, धर्मराज बाबा के सामने उसको रख दो, और उसके बाद में बहुत पावरफुल आधा घंटा योग करो। और वो योग ऐसा हो जैसे शंकर को तपस्या में दिखाया हुआ है। पावरफुल लाइट हाउस, माइट हाउस बनकर बैठो, ज्वाला स्वरूप की स्थिति में बैठो, और आज सारे दिन भर के जो भी ऊपर नीचे हुआ है चार्ट में उसको क्लियर करके आज का रजिस्टर आज की डेट में ही कंप्लीट सेटल हो जाना चाहिए। नेक्स्ट डे के लिए उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करो। ये है सहज पुरुषार्थ, और स्व उन्नति की लिफ्ट की गिफ्ट मिल जाएगी। हर एक ब्राह्मण परिवार का सदस्य अपने लौकिक घर को मधुबन समान बनाने की कोशिश करे, हो सके तो अपने घर के कोई कमरे को या कोई कोने को बाबा का कमरा भी बना ले, हॉल में या कोई ऐसा उचित स्थान हो तो कम से कम वहां त्रिमूर्ति और लक्ष्मी नारायण का चित्र भी जरूर लगाएं। कोई भी आए उनसे ज्ञान चर्चा हो तो उन चित्रों पर भी उनको समझा सकते हैं, जो वातावरण को अलौकिक बनाने में सहयोग देता है। यदि घर में सभी ज्ञान में नहीं चलते हैं तो निमित्त से राय लेकर ही चित्र लगाएं, क्योंकि मेरा ऐसा कोई कर्म ना हो जो लौकिक में परिवार में ही साथ में रहने वाले ना चलते हों, उनको पसंद ना हो, और मैं चित्र लगा दूं तो उसका भी उनके ऊपर उल्टा असर पड़ता है। तो अलग कमरा है तो शिव बाबा का कास्केट बाबा लगाकर लाल लाइट करके अमृत वेले नुमा शाम के समय वहां ही बैठ करके योग करें। जैसे मधुबन व सेंटर पर अपनी फुल ड्रेस में रहते हैं, वैसे ही घर में भी अपनी फुल ड्रेस में रहना है जिससे किसी भी प्रकार का वातावरण ना बने। बच्चों आदि पर कभी भी हाथ नहीं चलाना है या गुस्से में आकर उनको कटु वचन व गाली आदि नहीं देनी है। ये सब ज्ञान के विपरीत है। तो पीछे हमारा कौन सुनेगा? वो कहेंगे आप इतने समय से जाते हो तो भी गुस्सा करते हो, क्रोध करते हो, गाली दे देते हो, हमको क्यों कहते हो चलो वहां पर कोर्स करो, ज्ञान सुनो। इस पर एक बात सुनाती हूं। हमारे पास एक युगल आता था, अभी तो दोनों ने शरीर छोड़ दिया, साकार मम्मा बाबा के समय के थे। तो उसका ग्रैंडसन था, तो घर में ही था, 3 साल का था, अभी तो स्कूल भी नहीं जाता था। तो ड्राइंग रूम में था, सोफे पे जंप लगा रहा था, कभी सोफे का कुशन नीचे डाल देगा, उसके ऊपर खड़ा होके जंप लगाएगा, कभी स्टूल को उल्टा कर देगा, कभी स्टूल पर चढ़ेगा। तो दादा ने थोड़ा उसको ऊंची आवाज में बोला, ये क्या मस्ती तूफान कर रहा है, शांति से बैठ जा। उसने सब छोड़ दिया और उस छोड़ने के बाद शांति से दादा के पास धीरे से चल करके आता है। वो 3 साल का बच्चा है। दादा को कहता है, दादा मुझे प्यार से कहोगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा, और गुस्सा करोगे तो अभी शारदा दीदी को फोन करता हूं। दादा गुस्सा करता है। अभी इतना छोटा सा 3 साल का, उसको इतनी समझ है कि दादा जहां जाता है वहां गुस्सा नहीं करते हैं। तो वो छोटा बच्चा भी उस समय मेरे लिए कितना बड़ा टीचर बन गया, मेरी भूल को रियलाइज कराया कि आपको ये नहीं करना चाहिए। तो बच्चों आदि पर अच्छा असर नहीं पड़ता। हम तो ऊंचते ऊंच बाप के रॉयल बच्चे, रॉयल चलन वाले हैं। ब्राह्मण कुलभूषणों को शादियों में जाना जरूरी नहीं है, यदि जाना आवश्यक है तो सेवा अर्थ। बच्चियों की शादी करनी पड़ती है, ज्ञान में नहीं चलते हैं, दहेज आदि लेना मांगना ये संगम युगी ब्राह्मणों की रीति नहीं है। कहावत है, मांगने से मरना भला, ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे ज्ञान की ग्लानी हो। लौकिक कार्य व्यवहार में आना जाना पड़ता है, निमित्त संबंध निभाना है, ऐसा समझकर जाने से हमें वहां फैशनेबल होकर अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर सज धज कर नहीं जाना चाहिए। नियम अनुसार हमारा खान पान, पहरवाइश सादा, सिंपल और उतना अच्छा हो। बाबा कहते बच्चे सिंपल रहकर सैंपल बनकर के दिखाओ। कोशिश करके लौकिक व्यवहार में भी सदा अलौकिक सर्विस का ध्यान रखें। ये हमारे ब्राह्मण जन्म का अलौकिक दिव्य कर्म है। हमें सदा अलौकिक बाप को ही फॉलो करना है। बच्चों को खुश करने के लिए उनको सिनेमा आदि स्थानों पर लेकर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो देखने वालों को मौका मिल जाता है और व्यर्थ संकल्पों की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। सहयोगी आत्माएं अपने प्रति एक दो से स्थूल सेवा नहीं ले सकते। योग युक्त बनाने में ये विघ्न रूप बनता है। बाप दादा कहते हैं, सदैव याद रहे जैसे कर्म हम करेंगे, हमको देख करके दूसरे करेंगे। सेंटर पर बहनों के साथ इकट्ठा एक ही टेबल पर भोजन पान नहीं करना चाहिए, और सेंटर पर अकेली बहन होने के पर ज्यादा समय एकांत में नहीं रहना चाहिए। इससे फैमिलियरिटी का आवाज उठ जाता है, वातावरण खराब होता है और नुकसान पहुंचता है। अपने दिल की बात, अगर कोई अपनी भूल हुई है तो बड़ी बहन या जोन इंचार्ज बहन को ही सुनानी है या लिख कर देनी है, छोटी बहन को नहीं सुनाए, उससे नुकसान हो सकता है। बाबा कहते हैं, बच्चे जितना कायदा उतना ही फायदा। भाइयों को बहनों के कमरे में पूछकर ही जाना चाहिए, बहनों के बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए और बहनों को किसी भाई के बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए। ये भी हमारा एक डिसिप्लिन है, मर्यादा है। कोशिश करके अपने नियम प्रमाण क्लास के समय पर ही जाना है। यदि कोई नौकरी का कारण है, अलग समय पर जाना पड़ता है, तो नियम प्रमाण क्लास यानी मुरली सुनना, योग करना है, समाचार पूछना या पर्सनल लेन देन करना ये शौक नहीं होना चाहिए। कभी भी बहनों की आपसी अंत लेने व छोटी बहनों की दिल लेने की कोशिश नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? आ रहे हैं समझ में? सदा यही समझो, हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमारा काम पढ़ाई से है और अपनी ईश्वरीय कमाई से है। कहां कहां कोई भाई ट्रांसफर होते हैं, अगर वहां सेंटर है तो सेंटर पर जाना अच्छा है, परंतु अगर वहां सेंटर है तो अपने यहां की निमित्त बहन से पत्र लेकर के अवश्य जाना है, जिसमें वो आपका सारा परिचय लिखेंगी। ऐसे नहीं हम वहां सेंटर पर नहीं जाएं और सदैव पर्सनल मुरली मंगाते रहें। कोई सेंटर नहीं है तो बात दूसरी है, बाकी व्यक्तिगत मुरली नहीं मंगानी है। क्लास के अंदर कब भी दो पार्टी बनाने में निमित्त और सहयोगी नहीं बनना है। हमारी एकता बनी रहे ये लक्ष्य हो और हम एक बाबा की ही श्रीमत पर चलते रहें, उसमें ही सफलता है। हर एक अपने को सेवाधारी समझे, औरों को आगे रखे तो आपस में भाइयों का स्नेह सदा बना रहेगा, नहीं तो हर एक अपने को बड़ा करने की कोशिश करता है। बाबा कहते, सदा अपने को निमित्त समझ, पहले आप का पाठ पक्का करो। कोई भी भाई व बहन की अवस्था नीचे ऊपर देखते हैं, वह कोई नापसंदी की बात देखते हैं, तो बड़ी बहन इंचार्ज बहन का ध्यान खिंचवाना है, जो उनको ठीक कर सके। एक दो को बताकर वातावरण ना बनाए, शुभ चिंतक बनकर उनको योगदान देते रहना है। संपूर्ण पवित्रता मन वचन कर्म दृष्टि वृत्ति इस संपूर्ण पवित्रता पर विशेष ध्यान रखना है। अपने से कोई छोटी मोटी भूल हो जाती है तो आप पे ही अपने को दंड देना है। क्या दंड देना है? जैसी भूल वैसा दंड। बिल्कुल मौन हो जाओ, 3-4 घंटा योग करो, 1 दिन अखंड तपस्या करो, ये दंड है। हाँ, जिस दंड में कमाई है, रियलाइजेशन है। रोना, रूसना, मूड ऑफ करना, ईर्ष्या, द्वेष, आवेश में आना, पर चिंतन करना, अनुमान करना, ये सब मर्यादा के विपरीत है। बाबा कहते, बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो, बुरा ना सुनो। फिर हमारी दादी जी ने 2 और ऐड कर दिए, बुरा ना सोचो, बुरा ना करो। बाप दादा और बड़ी बहनों के साथ साफ सच्ची दिल तो सतगुरु की कृपा के पात्र बन सकते हैं। मधुबन से जाने के बाद अपना मनसा वाचा कर्मणा का चार्ट तथा समाचार मधुबन में मास में 1 बार जरूर लिखना चाहिए। अभी कहेंगे किसको लिखें? बाप दादा को लिखो, मधुबन लिखो, बाबा के आगे रखा जाएगा। बस हम बाबा से सच्चे रहे। ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध अगर कोई भूल हो जाती है तो स्वयं ही बाप दादा निमित्त बनी हुई बड़ी बहनों को सुनाएं, बताएं, बाबा के कमरे में भूल लिख करके रखें, प्रायश्चित पत्र लिख कर भेजें, विकर्म का खाता हल्का हो जाएगा और वो भूल फिर से रिपीट नहीं होगी। इसमें स्वयं का ही कल्याण है। कोई सोचते हैं बड़ों को भूल बताएंगे तो बड़े हमारी टीचर को बताएंगे या दूसरे को बताएंगे, इसमें बहुत बड़ी विशालता है। आप इसमें निश्चिंत रहें, वो कभी भी आपस में एक दूसरे से वो बातें नहीं करेंगे। मधुबन में आते हैं, बाबा के कमरे में बैठकर अपनी भूल पश्चाताप लिख के, वहां भी बाबा का बॉक्स है, उस बॉक्स में डाल दें, कोई पढ़ता नहीं है, बॉक्स भर जाता है, फिर उसको जला देते हैं। बाबा के पास पहुंचा, मैं हल्की हो गई, निश्चिंत हो गई। मधुबन तथा सेवा केंद्र इंचार्ज ब्राह्मणी को अधिकार है कोई भी विकार के वश अशांति फैलाने वाले कोई भी भाई अथवा बहन को सेवा केंद्र या मधुबन में आने से मना कर सकते हैं। मधुबन तथा जोन इंचार्ज की स्वीकृति के बिना कोई भी भाई को सेंटर पर नहीं रख सकते। कोई लिटरेचर आदि छपाना है, जोन इंचार्ज से पास करा करके ही उसको छपवाना है। और ईश्वरीय कार्य के निमित्त बनी हुई सेवाधारी बहनों की राय से करने में ही इसमें कल्याण है। सेंटर पर आने वाले भाई बहन अपनी आत्म उन्नति के लिए, ज्ञान और राजयोग की पढ़ाई के लिए आते हैं, अथवा सेंटर पर किसी से भी स्थूल पैसे की लेन देन व धंधे आदि की बातें नहीं करनी है। कभी कभी आजकल 1-2 से किसी को जरूरत हुई, दूसरे को बोला, उसने भी बड़ी शुभ भावना से कि चलो आवश्यकता है तो मदद कर देता हूं, फिर तो रिटर्न वापस दे ही देगा, इतने समय में देना है उसको, अब वो नहीं देता है। नहीं देता है तो जिसने दिया वो हैरान होता है, दुखी होता है, डिस्टर्ब होता है, फिर आकर के निमित बहनों को बोलेगा इसको जरूरत थी, मैंने दिया, अभी ये नहीं देता है। भाई जब दिया था तो पूछ करके दिया था, अब जब नहीं देता है तो फिर बीच में बहनों को लाते हैं। इस कारोबार में बहनें नहीं आ सकती, इसलिए बाबा सदा कहते हैं आपस में कोई भी धन की लेन देन नहीं करो, बिजनेस की लेन देन नहीं करो, अपना अपनी रीति से ही चलाओ। कोई भी विद्यार्थी एक दो दिन के लिए भी कोई दूसरे स्थान पर जाते हैं, उनको कोई भोजन आदि की सेल्वेशन चाहिए या रहने की सेल्वेशन चाहिए, तो वो टीचर बहन से अब पत्र लेकर के ही जाएंगे। प्रदर्शनी, सम्मेलन, मेले आदि की सर्विस करने में अपनी मनसा वाचा कर्मणा स्थिति पर पूर्ण ध्यान रखना है। योग युक्त हो सर्विस करने में ही सफलता समयी हुई है। ओम शांति। मर्यादाओं की तो इतनी लिस्ट है कि हम चार घंटे ले तो भी कम पड़ जाता है। इतनी सूक्ष्म बाबा ने हम बच्चों को मर्यादाएं बताई हैं, फिर भी स्वयं पर जितना हम अटेंशन रखते हैं उतनी बाबा की भी मदद हमको मिलती है। ओम शांति।